أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، أما بعد. السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم شادی کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، اور کچھ گزارشات میں نے شادی کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کی تھیں. آج پھر شادی کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے. پچھلے پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا کہ شادی جو ہے وہ سنت مستحب ہے، سنت مؤکدہ، یعنی ایسی سنت ہے کہ جس کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. روایت میں بھی، آیت کے ذریعے سے بھی ہم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ان کی شادی کرا دو جن جن کو ہم نے بتایا ہے، اگر یہ فقیر ہوں گے تو ہم ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیں گے، مالدار کر دیں گے. گویا شادی کے ذریعے سے جو ہے وہ فقر اور غربت اور تنگ دستی دور ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے. چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک جوان پیغمبر اسلام کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں، غریب ہوں. آپ نے فرمایا کہ شادی کر لو. اس نے شادی کی لیکن جو ہے وہ حالات اچھے نہیں ہوئے. پھر پیغمبر کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ پریشان ہوں اور میں نے شادی بھی کر لی، کہا ایک شادی اور کر لو. پھر پیغمبر اسلام کے پاس آیا، پھر آپ نے یہ فرمایا. تو روایت میں ملتا ہے کہ تین یا چار شادیاں اس نے کی ہیں، تب جا کے جو ہے وہ مالدار ہوا ہے. بہرحال مقصود یہاں پر یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ چار شادیاں کرے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فقر سے نہ ڈرے کہ کچھ ہے نہیں، کیا کھلائیں گے، جاب نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے. آپ اپنی کوشش کو کرتے رہیے، سروس کے لیے، جاب کے لیے، کسی کام کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، مزدوری کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے کوشش کرتے رہیے. دینا اللہ کا کام ہے، اللہ عطا کرے گا. لہذا ان بہانوں سے شادی کو نہ چھوڑیے، بلکہ شادی جو ہے انسان کو کرنی چاہیے. بلکہ شادی کبھی کبھی واجب ہو جاتی ہے. کب واجب ہوتی ہے؟ فقہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان شادی نہ کرنے کی بنا پر گناہ اور حرام میں پڑ جاتا ہے، یعنی کسی کو خوف ہے کہ اگر اس کے پاس بیوی نہیں ہوئی، اس نے شادی نہیں کی، تو حرام کام میں مبتلا ہو جائے گا. مثال کے طور پر نامحرموں کو دیکھے گا، تو ایسے انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ شادی کرے. اب شادی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ شادی سے پہلے کچھ مراسم اور کام جو ہے انسان انجام دیتا ہے بیوی کے انتخاب کے لیے. بیوی کے انتخاب یعنی مختلف طریقے ہیں. بعض جگہوں پر جو ہے اکثر جو رائج اپنے ہندوستان میں ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ لڑکی کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے لڑکی کے ماں باپ لڑکے کو دیکھتے ہیں. ایک دو بار آنا جانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے صفات سے، ایک دوسرے کے حالات سے، خاندان سے واقفیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. بہرحال کچھ صفات لڑکے میں دیکھے جاتے ہیں، کچھ صفات لڑکی میں دیکھے جاتے ہیں. لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ لڑکا مالدار ہے یا نہیں، سرکاری جاب ہے یا نہیں، لڑکے کا قد کیسا ہے، چہرہ کیسا ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے یا کرتا پاجامہ پہنتا ہے، مولوی ہے یا غیر مولوی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ، جاب کیسی ہے، کام کیا کرتا ہے، کسان ہے یا غیر کسان ہے، زمین ہے یا نہیں، گھر اپنا ہے یا کرائے کے گھر پر رہتے ہیں. لڑکے والے دیکھتے ہیں کہ لڑکی کو جو ہے وہ کھانا بنانا آتا ہے یا نہیں، لڑکی کا قد کیسا ہے، لڑکی جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے یا نہیں، اور ساری چیزیں جو ہے بہت ساری چیزیں لڑکی کے سلسلے میں دیکھی جاتی ہیں. خاندان کیسا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں. لیکن جو مہم چیزیں ہیں، جو روایات میں بیان کی گئی ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ کم توجہ کی جاتی ہے. یہاں پر جو ہے وہ ہم ایک اچھی بیوی کی صفات کے، اچھی لڑکی کی صفات کے، جس کو انتخاب کیا جا سکتا ہے شادی کے لیے وہ، اور ایک ایسی لڑکی کی صفات کہ اگر اس میں، لڑکی میں یہ صفات پائے جائیں، وہ صفات بھی ہم بیان کریں گے کہ اگر لڑکی میں وہ صفات پائے جاتے ہوں تو بہتر ہے کہ اس سے شادی نہ کرے. روایات کی نگاہ سے پیغمبر اسلام نے جو بیان کی ہیں اس کے اعتبار سے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلے तो ये अर्ज़ कर दूँ कि इंसान को जो है वो सिर्फ़ ज़ाहिरी खूबसूरती और माल पर जो है वो इक्तफा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अलावा भी कुछ सिफात देखने चाहिए। चुनांचे जो है पैगंबर इस्लाम से रिवायत में है कि अगर इंसान जो है वो किसी लड़की से शादी करता है उसके दीन के लिए, तो अल्लाह ताला जो है उसको माल भी अता करता है और खूबसूरती भी। लेकिन अगर किसी से खूबसूरती और माल के लिए शादी करता है, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ उसको उसी पर मौकूल कर देता है। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम अच्छे सिफात बयान करेंगे। सबसे पहली सिफत तो ये है कि लड़की बामोहब्बत होनी चाहिए। बामोहब्बत का क्या मतलब है? यानी खुद लड़की ऐसी हो कि उससे मोहब्बत की जाए और खुद लड़की मोहब्बत करने वाली हो। यानी लड़की इस चीज़ को जो है वो लड़की को जो है उसके घर में देख कर जो है समझा जा सकता है उसकी बातों के ज़रिए। यानी लड़की भी ऐसी हो लायक मोहब्बत हो, यानी जब उसके देखे इंसान उससे गुफ्तगू करे तो खुद ब खुद उससे लगाव और मोहब्बत पैदा हो जाए, और खुद लड़की भी मोहब्बत करने वाली हो। दूसरी सिफत यह है कि लड़की जो है वो पाक दामन होनी चाहिए। यानी लड़की का किरदार अच्छा हो, बापर्दा बाहिजाब हो और इज्जत का ख्याल रखने वाली हो। तीसरी शर्त यह है, तीसरी सिफत यह है कि वो अपने खानदान में, लड़की जो है अपने खानदान में अजीज होनी चाहिए। यानी उसका किरदार ऐसा हो कि उसके खानदान वाले भी बाइज्जत उसको समझते हों, इज्जत के साथ उसको पेश आते हों, अजीज रखते हों, उसको दोस्त रखते हों, यानी उससे मोहब्बत करते हों, लड़की से लगाव पाया जाता हो खानदान के दरमियान, ऐसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लड़की का किरदार ऐसा हो कि उसके किरदार की वजह से जो है उसके घर वाले उससे ज़्यादा मोहब्बत ना करते हों, उसको अच्छा ना समझते हों, उससे ज़्यादा लगाव ना हो, ये नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जो है ठीक है घर में इज्जत और ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन शोहर के मुकाबले में लड़की को मुतवाज़े और मुनकसर होना चाहिए, यानी एकदम इनकसारी के साथ पेश आए शोहर के सामने। यानी अलबत्ता अगर लुगत में, डिक्शनरी में जो है वो अरबी डिक्शनरी में तवाज़ो के माना देखा जाए, तो तवाज़ो के माना अपने आप को जलील बनाकर, अपने आप को छोटा बनाकर पेश करना। लिहाजा जो है वो लड़की घर में खानदान में अजीज होनी चाहिए, लेकिन शोहर के सामने जो है वो तवाज़ो और इनकसारी से पेश आए। इसके बाद जो है वो एक और सिफत जो होनी चाहिए वो ये है कि सिर्फ शोहर के लिए जीनत करे, सिर्फ शोहर के लिए अपने आप को सजाए, सिर्फ शोहर के लिए सिंगार करे, सिर्फ शोहर के लिए अपने आप को बनाए। ये जो है मैं यहाँ पर इस बात को अर्ज़ कर दूँ, बहुत बड़ा फसाद है वाकई। आज जो है वो औरतें अपने शोहर के बजाय दूसरों के लिए जीनत करती हैं। जब मजलिस में जाना होता है तब अच्छे कपड़े पहनती हैं, क्रीम पाउडर लिपस्टिक और न जाने क्या क्या, तभी जो है जेवरात भी पहने जाते हैं। घर में है ना कोई जेवर है, कपड़े भी जो है वो ऐसे उल्टे सीधे पहने हुए हैं, और ना कोई खूबसूरती और ना कोई जीनत, ना जो है वो कोई सिंगार, ना कोई बनाव, कुछ नहीं घर में। लेकिन जैसे ही बाहर मार्केट जाना है, मजलिस में जाना है, महफिल में जाना है, शादी में जाना है, कपड़े भी नए बेहतरीन बग़ैर शिकन के, जेवरात जितने घर में रखे हैं वो सारे, अगर बस चले तो आस पड़ोस के भी लेकर पहन लें, क्रीम पाउडर जो पहले के रखे हैं वो भी नए मंगा कर भी, तरह तरह के न जाने क्या क्या बनाओ सिंगार। किस लिए? अगर शोहर के लिए कर रही तो घर में करना चाहिए। ये जो बाहर लगा कर जा रही है इसका मतलब दूसरों के लिए। यकीन जानिए आज अगर आप अपने आप को ऐसा बनाकर बाहर जाएंगी कि दूसरे लोग आपको देखें, तो यकीनन आपका शोहर भी दूसरों को देखेगा। अगर आप ये चाहती हैं कि आपका शोहर किसी को ना देखे, तो आप अपने आप को किसी के सामने ना पेश कीजिए, अपने आप किसी के सामने ना जाइए। आज अगर आप दूसरों से परहेज करेंगी, पर्दा करेंगी, तो खुद शोहर पर भी इस बात का असर पड़ेगा कि मेरी बीवी दूसरों के सामने नहीं जाती है, मेरी बीवी पर्दे का इतना ख्याल करती है, मेरी बीवी किसी के सामने नहीं आती है, मेरी बीवी किसी के लिए बनाव सिंगार नहीं करती है, लिहाजा मुझे भी ये अधिकार नहीं है कि मैं किसी को देखूं, मैं किसी की तरफ नज़र उठाऊं। लिहाजा अगर आपका शोहर किसी को देखता है तो आप खुद उसके लिए कदम उठा रही हैं, दूसरों के लिए मेकअप करके, दूसरों के लिए बनाव सिंगार करके। लिहाजा इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। हाँ, अपने शोहर के लिए चाहे जितना मेकअप कीजिए, चाहे जितना बनाओ श्रृंगार कीजिए, करना चाहिए, मोहब्बत में इजाफा होता है। अगर औरत जो है वो हमेशा पूरे दिन जो है वो है उन्हीं कपड़ों से काम में लगी रहे, उन्हीं कपड़ों से शोहर के सामने आती जाती है, शोहर बाहर से आया और औरत जो है वही पजमुर्दा कपड़े पहने हुए गैर हालत में है, तो मोहब्बत जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। लिहाजा जो है वो यहाँ तक ताकीद की गई है कि काम करने के कपड़े अलग होने चाहिए और बाकी औकात में शोहर के साथ रहने के लिए कपड़े अलग होने चाहिए, ताकि जो शोहर के साथ रहने के लिए कपड़े हैं, जो फुर्सत के वक्त के कपड़े हैं, वो अच्छे कपड़े हों, गंदे ना होने पाएँ। लिहाजा काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, झाड़ू देने के लिए, बर्तन धोने के लिए अलग कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके बाद जब बाकी औकात हैं, शोहर के आने का वक्त है, तब जो है औरत को अपने आप को बनाकर बनाव श्रृंगार के साथ जो है वो साफ सुथरे होकर जो है शोहर के सामने पेश करना चाहिए, ताकि मोहब्बतों में इजाफा हो। ये सबब बनता है कि मोहब्बत जो है एक दूसरे से लगाव जो है वो हमेशा बाकी रहता है, लेकिन जो है आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता। औरतें जो है सिर्फ उस वक्त अपने आप को सजाती और बनाती हैं, बनाव श्रृंगार करती हैं, जब घर से बाहर जाना होता है। यानी मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये बनाव श्रृंगार शोहर के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए किया जा रहा है। लिहाजा जो है वो इस सिलसिले में ख्वातीन को भी गौर और फिक्र करना चाहिए। आखिरी जो सिफत यहाँ पर हमें बयान करनी है वो ये है कि बीवी शोहर की इताअत करने वाली हो। यानी ऐसी लड़की से शादी की जाए, अलबत्ता ये बाद ही में मालूम होता है, लेकिन ख़ानदान और घर में ही मालूम हो सकता है। बाप, माँ, भाई, बहनों की इताअत कैसे करती है, कैसे उनका कहना मानती है और उसका मजहबी रुझान कितना है, इससे मालूम हो जाएगा कि वो शोहर की इताअत करेगी या नहीं करेगी। शोहर की इताअत करने वाली होनी चाहिए। अलबत्ता जो है वो शोहर की इताअत से मुराद जो है, मैं आपके सामने यहाँ पर अर्ज़ कर दूँ कि शोहर की इताअत से मुराद जो है यहाँ पर वो तमाम उमूर में इताअत है। यानी जो काम शोहर कहता है उसमें उसकी इताअत करे, खाना बनाने के लिए कहता है इताअत करे, जो भी काम उससे कहता है सिवाय हराम, यानी खुदा न खास्ता अगर शोहर किसी ऐसे काम का हुक्म दे जो शरीयत की निगाह में हराम है तो उसको अंजाम नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ जो सिफात बयान किए गए हैं उनमें जो शोहर की इताअत से मुराद ये है कि शोहर जो काम करने के लिए कहे औरत जो है मना ना करे, उसको अंजाम दे दे। लेकिन इताअत जो वाजिब है, देखें यहाँ तो एक सिफात में से इताअत करे, यानी इताअत यहाँ जो है वो तमाम कामों में शोहर की इताअत करना, लेकिन जो इताअत वाजिब है बीवी के ऊपर शोहर की, जो कहा जाता है कि शोहर की इताअत वाजिब है, इताअत वाजिब है, इताअत वाजिब है, वो तमाम उमूर में वाजिब नहीं है। यानी खाना बनाना और कपड़े धुलना, झाड़ू लगाना और घर के दूसरे काम, इन सब में इताअत वाजिब नहीं है। अलबत्ता जो है वो ये काम जो है घर के काम जो है आमतौर पर औरतों के लिए हैं। बीबी फातिमा की शादी के बाद जब पैगंबर इस्लाम आपके घर तशरीफ़ लाए और आप फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान कामों को बांट रहा हूँ, घर का काम जो है वो फातिमा अंजाम देंगी, बाहर का काम अली अंजाम देंगे, तो बीबी बहुत खुश हुई। कहते हैं या रसूलल्लाह, पैगंबर इस्लाम ने पूछा फातिमा खुश क्यों? कहा या रसूलल्लाह, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपने काम को तकसीम कर दिया है, घर का काम मेरे ऊपर सौंप दिया है और बाहर का काम मौलाए कायनात को, हज़रत अलैहिस्सलाम को सौंप दिया। यानी बीबी खुश हुई है जब आपको घर का काम, घर घर की जिम्मेदारियाँ मिली हैं। लिहाजा घर का काम जो है वो औरतों के लिए है और औरतों को अंजाम देना चाहिए। ख़ानदान और इज़दवाजी ज़िंदगी को कायम और बरकरार रखने का तरीका भी यही है। लेकिन वाजिब इताअत जो है शरीयत की निगाह से, बाज़ मकामात पर ऐसा होता है कि लोग जो है वो इस लफ्ज़ को लेकर जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं और न जाने किस किस काम के लिए औरतों को मजबूर करते हैं। वो वाजिब इताअत जो है वो तीन चीज़ों में है। सबसे पहले तो घर से बाहर नहीं जा सकती है, इस चीज़ में इताअत। दूसरे जो है शोहर के माल को बग़ैर उसकी इजाज़त के खर्च नहीं कर सकती है, इसमें इताअत। तीसरे जो है बीवी के लिए लाजिम है कि वो हर वक्त शोहर के लिए आमादा रहे, जब वो चाहे तब उसके लिए आमादा रहे। इन तीन चीज़ों में इताअत जो है, एक तो शोहर के लिए आमादा रहना, दूसरे घर से बाहर निकलना, तीसरे जो है वो शोहर के माल को खर्च करना। इन तीन चीज़ों में इताअत वाजिब है। बाकी चीज़ों में बेहतर यह है कि इताअत करनी चाहिए, ताकि शादी के बाद घर जो है वो मेल मोहब्बत शौक़ और जज्बे के साथ ज़िंदगी गुजरती रहे और सिलसिला आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पर तमाम होता है। اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور برے صفات آپ کے سامنے بیان کریں گے، یعنی ایسے صفات کہ جو اگر کسی لڑکی میں پائے جائیں تو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔